राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। शिष्य गुरुगण धार्मिका गिरधारी की विशेष कृपा से 7 दिनों तक बड़ी रसीली और सिद्धांतपूर्ण कथाएं चल रही थी। आज उसका समापन दिवस है। अभी तक दशम स्कंध सुदामा जी के चरित्र से समाप्त हुआ, एकादश और द्वादश की कथाएं होंगी। उसमें 11वें स्कंद में कृष्ण ने ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ में कृष्ण के समीप आए और बोले, जे प्रभो, हम लोगों ने आपसे भूभार हरण करने के लिए प्रार्थना की थी। आपने बाल्यकाल में पूतना, अघासुर, बकासुर सब दैत्य दानवों को मारा, पुनः कंस और उसके अनुचरों को मारा, जरासंध इत्यादि राजाओं को मार करके भूभार हरण किया, अंत में महाभारत के युद्ध में दोनों पक्षीय जो सेनाएं थीं, जिनके भार से पृथ्वी उत्पीड़ित हो रही थी, उसको भी आपने उतार दिया। पौंड्रीक, साल्व, काशी नरेश इत्यादि सबको आपने संहार कर पृथ्वी का भार उतार दिया। अब यदि आपकी कृपा हो और उचित समझें तो आप अब गोलोक वृंदावन में पधारिए। कृष्ण ने कहा, जे मैं भी ऐसा ही समझ रहा था, जिस काम के लिए मैं आया था वो सब भार उतर गया, किंतु अभी कुछ काम बाकी है। वो काम क्या है? हमारे कुल में मेरे हाथों के द्वारा रक्षित जादव जो कुल है, उनके भार से भी मेरे जाने के बाद में वो देवताओं को भी हरा देंगे और हो सकता है वो पृथ्वी के भार स्वरूप हों। इसलिए यह काम भी पूरा करके और मैं शीघ्र ही वैकुंठ लोक जाते समय तो आप लोगों के ब्रह्मलोक सत्यलोक से होकर के जाऊंगा। यह करके उनको तो भेज दिया, ब्रह्मा जी और देवता लोग अपने ध्यान में गए। इधर भगवान की प्रेरणा से, कृष्ण की प्रेरणा से कुछ जदुवंशी बालक लोग सांब को, उनके पुत्र सांब हैं कृष्ण, उनको स्त्री के रूप में सजाया और उसके पेट को कपड़े से और एक तवा होता है रोटी सेकने का, उसके ऊपर में बांध दिया, ऊंचा कर दिया और गर्भवती जैसा बना करके ऋषियों के पास में गए। उस समय में पास ही देवर्षि नारद, महर्षि दुर्वासा, वशिष्ठ और बहुत से ऋषि लोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पास ही में कुछ हरिकथा का सत्र कर रहे थे, हरिकथा हो रही थी। उस समय ये उदंड लड़के उनके पास में पहुंचे اور بولے یہ بڑی لجیلی یہ سندری ہے, گربھوتی ہو گئی ہے, اس کو گرب میں بچہ ہے, آپ لوگ کرپا کر کے, آپ تو سب انتر جامی ہیں, یہ بتلائیے کہ اس کو بیٹا ہوگی یا بیٹی. ایک بار نہیں دو تین بار انہوں نے ان سے پوچھی ان کا اپہاس کرنے کے لیے. تب رشیوں کو بڑا کرودھ آیا اور وہ بھگوان کی پریرنا سے ہی ابھیشمپات ان کو دیا ساپ, او اس کے گرو سے بیٹا اور بیٹی کچھ نہیں, ایک مسل پیدا ہوگا اور وہ تمہارے سارے ونش کا دھونس کر دے گا. اب تو یہ لڑکے بڑے ڈرے اور وہاں سے آ کر کے پیٹ کو کھولا, دیکھا کہ سمچوش میں اس میں ایک موسل جس سے استریاں کوٹتی ہیں اوکھل میں, وہ دیکھا اور اس کے انت میں اس میں لوہے کا ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ اس پر لگا ہوا تھا, ایسا ہی ہوتا ہے موسل. اب تو وہ بڑے ڈرے اور کرشن سے کچھ نہیں کہا. مہاراج اگرسین کے پاس میں گئے اور بولے پتامہ ہم لوگوں نے بڑا نیا کیا, ان ریشیوں سے دل لگی کرنے کے لیے پریہاس کرنے کے لیے ہم لوگ گئے تھے اور انہوں نے ابھیشاپ دے دیا کہ یہ اس کے گرو سے بیٹا اور بیٹی نہیں ہو کر کے موسل پیدا ہوگا, اسے تمہارے ونش کا دھونس ہو جائے گا, یہ کہہ کر کے وہ موسل ان کو دے دیا. انہوں نے کہا جی تم نے بڑا انیائے کیا, اسے بچنے کا اپائے کیا ہو سکتا, یہ کہہ کر کے موسل کو جلا دیا اور اس کے لوہے کا جو بھاگ تھا گول اس کو پتھر پر رگڑ کر ایک دم ایسا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا, ستو جیسا دھولی جیسا, کنتو ایک ایسا تھا اس کا جو بچا ہوا بھاگ وہ چورن نہیں ہو سکا, وہ تین کونے جیسا رکھ کر کے بڑا نکیلا بن گیا چھوٹا سا, اور انہوں نے اس لوہے کے چورن کو اور موسل کے جلے ہوئے بھسم کو لے کر سمندر میں بیچوں بیچ میں جا کر کے ڈال دیا اگرسین کی اچھا سے, کنتو کرشن کو کچھ نہیں بتلایا. پھر وہ جو لوہے کا جو ٹکڑا تھا ایک مچھلی نگل گئی اور جو چھوٹے چھوٹے کڑ ہو گئے تھے لوہے کے وہ لہروں کے تھپیڑوں سے سمندر کے تٹ پر آئے, جس سے بڑے بڑے پودے جس کو ایرکا کہتے ہیں جس کے پتے بڑے نکیلے ہوتے ہیں وہ برکش ہو گئے. اس مچھلی کو ملاحوں نے پکڑ لیا اور اس کا مانس کاٹ کر کے رسوئی بنانے کے لیے جب کاٹنے لگے تو پیٹ سے وہ نکلا لوہے والا کھنڈ, اس کو اس بہیلیے نے اپنے تیر کے انت میں لگا دیا. یہاں تک تو ہوا, ادھر دوارکا میں بڑے بڑے اتپات ہونے لگے, رکت کی برسہ ہونے لگی, ہاتھی کتے آدھی جانور بھونکنے لگے, چگھاڑ کرنے لگے, بنا بات کی بات آندھی بجلی کڑکنے لگی. کرشن نے کہا جی یہ کیا بات کہ کیوں؟ اوہ ان لڑکوں کے اتپات سے اب دوارکا کے نشٹ ہونے کا سمے آ گیا ہے. چاروں اور بیپتی ہی دکھ پڑتی ہے. انہوں نے سب جد بنسیوں کو بلا کر کے کہا اب دوارکا میں مت رہو, بڑے بڑے اتپات ہو رہے ہیں. پاس ہی میں سوم تیرتھ ہے جہاں سومناتھ جی کا مندر ہے, بڑا پوتر استھان ہے, وہاں پر ہم سب چلیں اور وہاں پر یگیہ کریں گے اور یگیہ کر کے برہمنوں کو سنتشٹ کریں گے, ان کو گو میں دیں گے, ان کو کھلائیں گے پلائیں گے, اس طرح سے ان کا ابھیشاپ کا بھاؤ دور ہو جائے گا, پھر ہم لوگ سرو کو شانتی سے رہیں گے. کرشن کے کہنے پر سب جدوبنسی لوگ پرستت ہو گئے اور سب لوگ سوم تیرتھ میں گئے. کیول بوڑھے بڑوں کو جیسے کہ کرشن کے پتا وسودیو جی اگرسین اتیادی وہاں رہ گئے اور ان کی رانیاں بھی رہ گئیں اور باقی جتنے چھتری ویر تھے سبھی لوگ وہاں پر پہنچے, یگیہ کیا اور برہمنوں کو بہت دکشنائیں دیں, ان کو کھلایا پلایا, ان کو گائے اتیادی دان میں دی اور انت میں میرے نام کا ایک شراب ہوتا ہے, مدیہ ہوتا ہے, انہوں نے خوب زور سے پی لیا اور اسے وہ بدھی ہین ہو گئے. ایک تو کرشن کی مایا, دوسرے اس کے پینے سے ایک دم متوالے ہو گئے, اپنا پرایا یہ سب بھول گئے, ایک دوسرے سے گالی گلوج کرنے لگے اور انت میں لڑنے لگے ہتھیاروں سے, استر سے, دھنوش باڑ سے پرسپر لڑ کر کے ایک دوسرے کو مارنے اور مرنے لگے. جب ان کا باڑ اور استر تلوار گدا ختم ہو گئی تو سامنے کنارے سمندر کے کنارے ارکا جو گھاسیں تھی ان کو اکھاڑنا آرمبھ کیا اور اسی سے لڑنا آرمبھ کیا. وہ وجر کے سمان کٹھور ہو گئی اور ان سے ایک دوسرے کو مار کر کے سبھی لوگ مرنے لگے. اس میں بلدیو پربھو جی ان کو سمجھانے گئے تو ان پر بھی آکرمن کیا. بلدیو پربھو جی اس کے بعد میں کرشن پر بھی آکرمن کر دیا. تب کرشن اور بلدیو جی نے باقی بچے ہوئے بیرو کا سب کا سنہار کر دیا مار کر. بلدیو پربھو جی اس کے بعد میں سمندر کے تٹ پر بیٹھ کر کے کچھ دھیان کیا اور ان کا سنکرشن روپ سرپ کا نکلا آنند اور وہاں سے اتر کی طرف میں چلے گئے. کرشن دیکھا جب تک ان کا سنہار ہو گیا ان کی اچھا تو پوری ہو گئی, اب وہ پاس ہی میں ایک پیڑ کے نیچے ایک پیر کے اوپر میں دوسرا پیر رکھ کر بیٹھی. اتنے میں ادھو جی ان کو کھوجتے کھوجتے پہنچے. اسی سمے میں میتریہ رشی وہاں پر پہنچ گئے. اس سمے ادھو جی نے کہا جی پربھو میں جان گیا اب تو آپ اس لوک کو چھوڑنے والے ہیں, کرپا کر کے مجھے بھی اپنے ساتھ میں لے چلیے. انہوں نے کہا جی نہیں, میرے بعد میں تم ہی جگت میں رہ کر کے میری لیلا کتھاؤں کا جگت میں پرچار کر کے لوگوں کا ادھار کرے گا, اس لیے تم کو یہاں رہنا پڑے گا. تم یہاں سے آج سے ساتویں دن سمندر دوارکا پوری کو ڈبا دے گا, تم یہاں مت رہو اور نگر واسیوں کو بھی کہہ دو جو وہ ارجن کے ساتھ میں اندر پرستھ چلے جائیں, وہ بھی نہ رہے, ہماری مہیشیا بھی نہ رہے, कोई भी यहां इस में न रहे। उस समय में उद्धव जी ने कहा कि जब मैं आप जा रहे हैं मुझे नहीं ले जा रहे हैं तो हमारा कल्याण कैसे होगा आप बतलाइए, माया को कैसे पार कर सकूंगा। तब उन्होंने उद्धव संवाद जो कहलाता है श्रीमद् एकादश स्कंद के 6 से 29 अध्याय तक उनको सुनाया। माया क्या है, माया क्या है जो सृष्टि स्थिति प्रलय करती है, जो जीवात्मा को इस शरीर में मैं हूं और ये मेरे हैं ये बुद्धि कराती है, और संसार चक्र में जिनको फंसाती है वो माया है। बड़ी दुरत्या इस माया को पार पाना कठिन है, हम सब इसी माया में डूबे हुए हैं। इसे रक्षा का उपाय क्या है, भयं द्वितीया दमनिविशता, भगवान को भूलने से हमारी ये दुर्वस्था हुई है। अब हम लोग संसार में डूब करके उस भगवान को याद नहीं करते, याद किसके करते हैं जो नश्वर चीजें हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा धन संपत्ति है, ये हमारे सगे संबंधी हैं, उनके मरने पर शोक करते हैं और पुत्र होने पर आनंदित होते हैं, और गए भगवान को भूल, यही माया है। तो इससे बचने का उपाय गुरु के चरण में शरणागत हो जाओ, उनसे तत्वज्ञान की शिक्षा करो, भक्ति की शिक्षा करो, और फिर उनके बतलाए हुए उपायों से भक्ति के अंगों से भगवान का भजन करो, तभी संसार से पार हो सकते हो, अन्यथा नहीं। इसके बाद में कृष्ण ने उनको 24 गुरु वाले दत्तात्रेय जी की कथा सुनाई, धरती जैसा सहिष्णु बनो, वृक्षों जैसा सहिष्णु बनो, वृक्षों का पत्ता, वृक्ष का छाल, वृक्ष का रस, सब कुछ परोपकार के लिए होता है, अपने लिए नहीं। उनकी लकड़ी से ये सब खाट पलंग और न जाने क्या क्या बनते हैं, यदि कोई पत्थर मारता है तो वो फल देते हैं, कभी भी पानी नहीं मांगते, किसी की निंदा नहीं करते। वैष्णव लोगों को ऐसा होना चाहिए, तब भगवान का भजन हो सकता है। देखो एक समय एक राजा थे, क्या नाम, पौमय राजा थे, जो कि मेमनों के लिए उर्वशी के लिए मोहित हो गए। पुरुर्वा राजा थे, एक समय वन में गए थे, वन में एक परम सुंदरी जुआ लड़की को देखा, देख करके मुग्ध हो गए। पूछो जो सुकुमारी देवी आप कौन हैं, किस लिए वन में आई हैं। उसने कहा जी मैं देवलोक से आई हूं, मेरा नाम उर्वशी है, मैं पति ढूंढ रही हूं, आप यदि मेरा पति होएं तो मुझे बड़ी खुशी हो। उन्होंने कहा जाए तो मुझको भी इससे अधिक और क्या खुशी हो, बस राजमहल में लौट करके उसके साथ में विवाह करके उसको रखने लगे। उसका एक शर्त था, मेरे 2 मेमने हैं, ये मेरे बड़े प्यारे हैं, इसको आपको रक्षा करनी पड़ेगी, इसको कोई ले ना जाए, यदि कोई ले गया तो मैं आपको छोड़ करके चली जाऊंगी, और दूसरा मैं आपको कभी भी नंगा नहीं देखना चाहती, यदि नंगा देखी तो मैं छोड़ करके चली जाऊंगी अपने लोक में। राजा ने कहा जी ठीक है। कुछ दिनों के बाद में अपने स्त्री के पास में वो थे, उसी समय में इंद्र ने कहा उर्वशी के बिना तो स्वर्ग लोक फीका है, हे अनचरो तुम जाओ और उर्वशी को किसी प्रकार से ले आओ, तुम लोग यदि उसके मेमनों को चुरा करके लाओगे तो वो अपने आप चली आएगी। तो वो भेड़ों को मेमनों को चुराने के लिए गए। आधी रात के समय में राजा नंगे अपनी स्त्री के पास में थे, उस समय में वो भेड़ों को चुरा करके देवता कंचर जब लेने जाने लगे तो मेमने मैं करने लगे। उस समय उर्वशी ने कहा, अरे कापुरुष, तू बड़ा वीर बनता है, तेरे सामने ही ये न जाने कौन चोर हमारे मेमने को ले जा रहे हैं, तुम इसकी रक्षा नहीं कर सकते। तो वो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में धनुष बाण या तलवार लेकर के चले, नंगे भी हो गए। और वो जो देवता कंचर थे भेड़ों को ले जा रहे थे, उनके डर के मारे भाग गए छोड़ करके। अब उसको नंगा देखकर उर्वशी ने कहा, अब आपके साथ में मैं नहीं रह सकता, ये कह करके अपने लोग जाने लगी। अब तो ये गिड़ा करके उसके चरणों में गिर करके कहने लगे, देवी थोड़ी सी देर ठहर जाओ, मेरी कामना पूरी नहीं हुई, मेरी बात मान लो, मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं अपने जीवन को धारण नहीं कर सकता। जैसे कामी पुरुष की गति होती है। उसने समझाया कि स्त्रियों को मोह में मत फंसो, जो फंसते हैं वो मरते हैं। किंतु उनको ज्ञान नहीं हुआ, बहुत तरह से समझाया शास्त्रों की बात, नहीं समझे तो वो अपने लोक को चली गई। अब लोक को चल गई थी ये पीछे 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 रोते हुए उसके पीछे पीछे लग करके उसके लोक में गए। वहां कुछ दिन रहे और फिर ज्ञान हुआ, अरे मैं राजा होकर के इतना वीर और एक गधे की भांति जिस प्रकार से गधा गधी के पीछे दो लत्ती सहता हुआ भी चलता है, मैं इतना वीर होकर के भी ये ऐसे कैसे बन गया, मुझको धिक्कार है। द्रौपदी काश में कोई दोष नहीं, उसने तो समझाया किंतु मैं नहीं समझा। कामी पुरुष, ओ मेरा जीवन बर्बाद हो गया, उसने ठग लिया, ये कह करके अपने मन से उर्वशी को निकाल दिया और लौटे, राज्यपाट छोड़ दिया और भगवत भजन के लिए चले। ऐसे कामी पुरुष, ऐसे कामी स्त्रियां संसार में डूबी हुई हैं, इनसे सावधान रह करके भगवान का भजन करना ही, इस प्रकार से उपदेश दिया। अब उधर में सुनो क्या हुआ। ये उपदेश देने के बाद में कृष्ण वहीं पर बैठे थे, ठीक है बैठे हुए थे। इतने में बहेलिए ने देखा उनके चरण के तलवे को लाल, उसने कहा जे एक मृगा कोई है, उसकी जीभ शायद है हिरण, बस वहीं से बाण चलाया, वही बाण जिसके नोक पर वो लोहे का लगा हुआ था सांप, और कृष्ण के चरणों में लगा। उस समय फिर वो दौड़ते हुए आया हिरण को पकड़ने के लिए, तो देखा ये तो कृष्ण बैठे हैं, ओह मैंने भूल से क्या कर दिया कृष्ण के चरणों में, ओह आप सब जगत के आधार हैं, विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, मैंने कितना अन्याय कर दिया, आप कृपा करके मुझे दंड दे। कृष्ण ने कहा मैं यही चाहता था, तुम चिंता मत करो, अभी तुम इसके लिए स्वर्ग में जाओ, कोई चिंता मत करो। इतने में उनका सारथी दारुक आया कृष्ण का, उस रथ पर लेकर के जिस पर वो चढ़ते थे, जब ही आया देखा क्या, जब उसे उतर करके कृष्ण के पास आया, उनके चरणों में गिर गया, देखा जे वो घोड़े और कृष्ण का अस्त्र शस्त्र सब कुछ सभी कुछ आकाश मार्ग में उड़ गए। अरे ये क्या हुआ। तब कृष्ण ने कहा जे जल्दी से लौटो यहाँ से और जाओ वसुदेव देवकी और उग्रसेन सबको कह दो कि आज ही से सातवें दिन में समुद्र ग्रास कर लेगा सारी, सब लोग यहां से जाओ। अर्जुन आएगा, ले जाएगा। यह कह करके फिर अपने शरीर से ही अंतर्ध्यान हो गए, जैसे बिजली आकाश में प्रवेश कर जाती है। सब देवता लोग, ब्रह्मा शंकर इत्यादि ने देखा, हाथ जोड़ करके, पुष्प वृष्टि होने लगी, आकाश से धुंध भी बजने लगी और ये लोग स्तव स्तुति करने लगे और देखते देखते चले गए। यहां पर हुआ क्या? कृष्ण के जो साथ में रहने वाले परिकर हैं, उसमें कृष्ण के पुत्र क्या है, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी, शंकरसन, ये सब कृष्ण के परिकर भगवान ही हैं। वो परस्पर लड़ करके मरेंगे? नहीं मरेंगे। ये तो एक लीला हुई लोगों को, जो कि विमुख लोग हैं भगवान से, उन लोगों को दिखलाने के लिए। असल में ये हुआ ही नहीं कुछ। जिस प्रकार से एक जादूगर था, वो अपनी पत्नी और दो लड़कों के साथ में कुछ खेल दिखलाने के लिए पुरस्कार की लालसा से राजभवन में गया। राजा और रानी, उसके लड़के और सभासद लोग वहां पर एकत्रित हुए और दो बांसों पर एक रस्सा डाल दिया और उसके ऊपर में, रस्से के ऊपर में वो चढ़ गई। सिर पर 1, 2, 3 घड़े, हाथ में एक बांस और लेकर के उसी पर नृत्य करने लगे, यहां से उधर, उधर से उधर। देख करके सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए, वह ये कैसे नाच रही है इस रस्सी के ऊपर में। जब उतरी तो रानी ने उसको एक हार गले में पहनाया, सोने का पहनाया। तो पासी में उसके दो लड़के थे, 8 वर्ष 9 वर्ष के, भैया मैं, मुझे दो, एक तरफ से ये खींचने लगा, इधर से ऐसे इधर खींचने लगा। तो नटी ने निकाल करके छोड़ दिया। अब वो खींचने लगा अपने तरफ, दोनों समान बलवान थे, कोई हारे जीते नहीं। तो एक ने तलवार अपने मैन से निकाली और दूसरे ने भी तलवार निकाली और उसने एक के गले को काट दिया, उसने दूसरे को गले, दोनों गिर पड़े। ये देखकर के नटी थी उनकी मैया, अरे क्या हो गया, मेरे लड़के मारे गए? बस एक तलवार उठा करके अपने गले को, और जो नट था, अरे मेरे लड़के पत्नी सभी मारे गए, उसने भी तलवार ली और गले से। अब तो वहां पर हाहाकार मच गया। सब लोगों ने कहा, जे ये खेल क्या था, ये तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया। उसके शव को उधर ने हटवा दिया और फिर रात में गए, बड़े सोचते रहे जे ये बड़ा अनर्थ हो गया। दूसरे दिन सवेरे उनके पास में कोई पत्र आया, महाराज हम लोगों ने पहले जो खेल दिखलाया तो सोने का हार दिया, और दूसरा जो खेल दिखलाया उसका आपने कोई पुरस्कार नहीं दिया, हम लोग मरे नहीं, वो तो खेल हमारा था। राजा रानी बड़े प्रसन्न हैं, कल हमारे घर पर आइए और देखिए जी हम लोग सब कुशल से हैं, और हमारा इनाम भी लेना मत भूलेंगे, लेते आइएगा। राजा रानी और सभासद उसके घर पर गए, देखा घर के बाहर वो फूलों की माला लेकर और उनके स्वागत के लिए वो खड़े हैं। राजा रानी को गले में माला दिया, महाराज हमारा पुरस्कार क्या, हम लोग तभी जीवित हैं। अरे तुम लोग जीवित हो, ये जैसे है ऐसे ही कृष्ण की जोग माया से, महामाया से
कोई भी युद्ध नहीं हुआ, कोई लड़े नहीं, कोई मरे नहीं, ये भगवान की माया थी। इसलिए मत समझिए यदुवंश का ध्वंस हो गया, वो तो एक लीला थी विमुखों को दिखलाने के लिए। और इसलिए कि उस कुल में जो देवता लोग आए थे कृष्ण की सेवा करने के लिए, जो देवलोक से आए थे देवलोक में चले गए, और बैकुंठ से जो आए बैकुंठ लोक में चले गए, जो गोलोक वृंदावन से आए थे वृंदावन में चले गए, और उनकी पत्नियां जो श्रीमती राधिका इत्यादि सखियों की सेवा के लिए आई थी, वो कृष्ण के साथ में उनके धाम में चली गई। इसलिए न कोई युद्ध हुआ, न ये लोग मरे, न कुछ हुआ। ऐसे ही हमने भी देखा है कोई जादूगर अपने लड़के का सिर काट करके और बक्से में बंद कर दिया, चाबी दिलवाया और कहा बेटा आ जाओ, और बाहर से पिताजी मैं यहाँ। ऐसी सब लीलाएं होती हैं, कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचे जे कृष्ण भी बाण लगा और मर गए। अरे कृष्ण को, कृष्ण ने आग खा लिया, जमुना का विषैला पानी पी लिया, दवानर में आग को ऐसे पी लिया, मरे नहीं।
महाभारत युद्ध में
भीष्म और कितने कर्ण और उसके बाणों से बिध गए तब नहीं मरे, और बहेलिए के प्राण से मर जाएंगे ऐसा। इस तरह से अब बाकी की कथा आप सुनाए, तीर्थ महाराज जी अभी आप लोगों को सुनाएंगे।